परम भागवतीय पुण्य श्लोक परमात्मनीय श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, स्वामी विद्यानंद जी महाराज, वर्तमान पीठाधीश्वर प्रेमपुरी आश्रम के स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण। आज दौल पूर्णिमा है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रागट्य दिवस। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद, हरे रामैव हरे रामैव हरे रामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कि प्रत्येक हृदय में भगवान नाम की एक जागृति उत्पन्न करने का परम यश भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी को। जगन्नाथ महाप्रभु जी के बाद में आप ही को एक चैतन्य महाप्रभु जी कहा गया। श्री चैतन्य नारद कलि संतरणोपनिषद के इस महामंत्र का प्रचार करते रहे, जिसके लिए कोई बंधन नहीं है। तमाम मंत्रों के लिए, जप के लिए कोई नीति नियम होते हैं, इसका कोई नियम नहीं, कोई गुरु की भी आवश्यकता नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री चैतन्य दिन रात उनका जप करते थे। वैष्णवों ने कहा, तू कैसा ढीढ़ है, शौच करने जाता है तब भी ये नाम जपता रहता है। महाराज मैं नहीं जपता, जीभ को आदत, चुप, जीभ को पकड़ के बैठा कर। अब मैं जीभ को पकड़ के बैठूंगा तो शौच कैसे शोधन करूंगा। एक लड़के को लेके जाना, वो पानी गिराएगा। एक छोटा बच्चा गया एक दिन, दूसरे दिन मना कर दिया, आप इतने बड़े ऐसे बैठते हो, मैं आपके सामने ऐसे नहीं जा सकता। बच्चे मैं क्या करूं। वैष्णव लोग कहते हैं कि मैं अनुचित कार्य कर रहा हूं, ये शौच के समय भगवान नाम लेने का। वो बच्चे ने कहा, निश्वास एक अविश्वास कदा रुद्धो भविष्यति। जो आप सांस लेते हैं उसका भरोसा क्या है, कब बंद हो जाएगा। छोड़ो, वैष्णव क्या कहेंगे कहने दो, अब नाम लो। गुरु होने के लिए कोई काषाय वस्त्रधारी महात्मा, कोई जटाधारी ऋषिकेश वाले महात्मा, यति सन्यासी, पूज्य बापूजी महात्मा गांधी जी को राम मंत्र है, वो उनके घर में वो सेवा करने वाली, सफाई करने वाली एक माई थी रंभा, उसने दिया। वो स्कूल नहीं जाना चाहते थे। अरे क्यों नहीं जाना, मुझे डर लगता है, वो पीपल का पेड़ है, वहां इमली का पेड़ है, उसमें भूत है प्रेत है। अरे बोल राम राम राम, राम का नाम बोलेगा सब भूत प्रेत भाग जाएंगे। अच्छा, यही राम नाम बोलते बोलते ईस्ट इंडिया कंपनी को बाबू ने भारत से भगाया। राम नाम का आयुध, शस्त्र भी शास्त्र भी। श्री चैतन्य महाप्रभु की जो दिव्यता थी, वो स्वयं में ही केवल प्रकट नहीं थी, इनके दूर दूर बसे भक्तों में भी इतनी थी। तादात्म्य विषयम् तेव, इसलिए इनकी अपने भक्तों के प्रति भी ऐसी भक्ति थी। एक भक्त को रक्तपीत हो गया, सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए, तो उसने भगवान के संकीर्तन में जाना बंद कर दिया। वहां ढोल बजेगा, खोल बजेगा, नीचे नीचे बाहु तुले, हरि बोल, हाथ उठा के लोग नाचेंगे। अब मैं नाचूंगा तो मेरे हाथ में जो भगवान बैठे हैं वो गिर जाएंगे। उन कीड़ों के प्रति उस भक्त के ऐसे भाव, ये जो भगवान है वो गिर जाएंगे, फिर इसलिए मैं इसे बैठता हूं, नहीं जाऊंगा। श्री चैतन्य को जब ये ज्ञात हुआ ये भक्त क्यों नहीं आ रहा है, आह ऐसा दिव्य भाव, हम उनका दर्शन करने जाएंगे। श्री चैतन्य अपने तमाम भक्त समुदाय के साथ में ढोलकोल बजाते, हरि बोल हरि बोल, ऐसे नाचते नाचते आए इस रक्तपीत भक्त के कुटिया के निकट। जब झांझ पकवाज जब बजने लगे, ये भूल गया कि यहां सब कीड़े हैं, वो भी हाथ उठा करके नाचने लग गया, अरे बोल अरे बोल अरे बोल। आकस्मिक उस बेहोशी मदहोशी भगवान के नाम की, हा अरे तुम मेरे नारायण तुम मेरे नारायण, नीचे गिर गए, फिर कीड़ों को उठा उठा करके वापस रखने लगे। इसकी ये दशा देख करके चैतन्य दौड़े हैं, इस भक्त को आलिंगन कर लिया, जैसे गाय अपने बछड़े को चाटती है, श्री चैतन्य उसके अंग को चाट लगे। कहने की आवश्यकता नहीं है, उसकी काया कंचन के समान हो गई। आज का बहुत पवित्र दिन है, श्री चैतन्य का प्रागट्य दिन है, होली का दहन ये अहंकार का दहन है। भगवान की भक्ति की शक्ति की, भगवत शक्ति की, भागवत शक्ति की विजय, आसुरी शक्ति का क्षय। आज के इस पवित्र दिन में भक्त प्रहलाद को हम प्रणाम करते हैं, श्री चैतन्य को प्रणाम करते हैं, महामंत्र को प्रणाम करते हैं। अभी अभी महाराज श्री अपने उद्बोधन में कह रहे थे, घड़ा है और घड़ी है, दोनों में भेद नहीं है। घड़ा भी मिट्टी का है और घड़ी भी मिट्टी की है। बोले वो कपड़ा भी मिट्टी का है और हम तो मिट्टी के बने ही हैं। तो यहां जो कृष्ण हमें पूछ रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, अर्जुन के प्रश्न के संबंध में, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम, ये तो ब्रह्म क्या है। परमात्मा ने कहा जिसका विनाश नहीं है, जो अविनाशी है वो ही ब्रह्म है। हमारे जीवन में जो कल हम बात कर रहे थे कि सुबह और शाम दोनों समय कि एक एक क्षण ऐसी होती है जहां शून्यावकाश रहता है। आप गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चलाने में एक गियर से दो गियर में जाएंगे तो एक क्षण ऐसा होगा जिसमें आप गियर एक में भी नहीं दो में भी नहीं, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। ये जो न्यूट्रल स्थिति है अगर वो शाश्वत रहे तो आप ब्रह्म में प्रवेश कर जाएंगे। वो न्यूट्रल स्थिति क्या है, मैं जागृत में भी नहीं हूं, मैं स्वप्न में भी नहीं हूं, मैं सुसुप्ति में भी नहीं हूं, जागृत और स्वप्न के बीच में एक खाली जगह है। ये खेत जो होते हैं, खेत में गन्ना पकता है, गन्ना पक गया तो काट लिया, गन्ना काट लिया, अभी तो धान पक गए और काफी जगह में गेहूं पक गया है। होली के दिन तो गेहूं कट गया, राजस्थान में गेहूं के बालियां और ताजा नया चना हो उसको आज होली में अर्पण करते हैं। तो ये जो गेहूं कट जाता है और चना कट जाता है तो आज काट लिया तो दूसरे दिन वो खेत में वो खेती चालू करता है क्या, नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, देखिए वो खेत को ऐसे छोड़ देता है खुला,
एक महीना तक। गन्ना काट लिया, एक महीना खाली पड़ा है। धान काट लिया, एक महीना खाली पड़ा है। गेहूं काट लिया, एक महीना खाली पड़ा है। क्यों? फिर वो जो थोड़ा थोड़ा छूटा था उसको जला देता है। जलाने के बाद में उसके ऊपर हल चला देता है। वो एक महीने तक वो धरती क्या कर रही थी? वो आगे पुनः खेती करने के लिए वो अपने में शक्ति को संजो रही थी। ये हम कहते हैं खाली है, नहीं, वो शक्ति को संजोना, वो बाहर से अपने भीतर में जाना। जो एक गुलाब होता है, गुलाब, ये गुलाब खिलने के पहले कली होती है। ये जो कली होती है वो बहुत छोटी होती है, धीरे धीरे विकास होता है। हमने उस कली को कभी सोचा कि इस कली में विकसित होकर के एक पुष्प बनने की क्षमता है? गुजराती में शू कहे, एक कड़ी मां विकास थवानी शक्ति डबुरायेली छे। इट्स कन्फाइन इन दैट। वो ऐसी है, दृश्यमान नहीं है, किंतु है। अगर वो नहीं है तो विकास ही नहीं है। हमारे यहां एक अतिथि आए, उनका नाम था हेलन किलर। ओ, दुर्भाग्य से आंख से दृष्टि नहीं थी, प्रज्ञा चक्षु महिला थी, बड़ी विदुषी, बड़ी ज्ञानवान, अमेरिका से आई थी। भारत की वो विशेष अतिथि थी, नेशनल गेस्ट। आप लोग तो ताजमहल देखने गए होंगे, गए क्या? आप देखा ताजमहल? कितना देर लगी? आशा बहन, आपका नाम? गीता बहन, हाँ, गीता बहन शर्मा वर्मा, शु नाम पारेख, गीता बहन। ताजमहल जोता कितनी बार लगी? एक कलाक, बे कलाक, त्रण कलाक, चार कलाक, पांच दिवस, एक दिवस, बस आपने आधा घंटा फोटो खिंचाया, फोटो खिंचाया था श्रीमती जी के साथ। वो दिनकर खिंचाता है ऐसा करके, दिनकर रात में देखा था सबको, देखो मैंने फोटो खिंचाया। अरे वो हेलन किलर है। हम सब लोग कहने के लिए बाहर की आंखों वाले, आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा। हेलन किलर को तो बाहर से दिखता नहीं है, वो तीन दिन तक ताजमहल को देखती रही। कैसे? उसको छूती थी और चलती थी धीरे धीरे, हर दीवार को, हर पत्थर को। उनके साथ में जो मीडिया था, वो मीडिया आजकल के जैसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया ही था। वो लोग तंग आ गए, ये क्या कर रही है अंधी, ऐसे ही सोचे वो लोग। तो तीन चार दिन जब हो गया, वो तंग आकर बोलते हैं, तुम क्या कर रही हो भाई? बोल रहे, मैं वो जो अरसपान है ना, संगे मरमर, उसमें वो नकासे गई है कविता, मैं उसको पढ़ रही हूं। पता है क्या हिम्मत है? हाँ, आरस पान मां कंडारेली कविता ने हूं वाचू छू। देखिए कैसी अवस्था है। हाँ, मुझ मेरे सामने भी आप पुष्प रख देते हैं। कल किसी ने गुलाब पुष्प रखा था, मैं उठा करके किसी को प्रसाद दे दिए। वो उनके हाथ में भी गुलाब पुष्प दिया, वो छोड़ी नहीं, ऐसे पकड़ के रही तीन चार घंटे, छोड़ती नहीं। मां तुम क्या कर रही हो? बोले ये कितना कोमल है, हम भी देखते हैं कोमल है। कोमल से छूट गया हमारा, वो कोमल के अंदर चली गई, कोमल के भीतर। वो क्या कही? हो कितना कोमल है, इसको बनाने वाला कितना कोमल होगा। देखिए ये ब्रह्म जो है, वो ब्रह्म हम बाहर से बोलकर छूट जाते हैं, कभी उसके भीतर जाने के लिए कोशिश नहीं किया। वो थोड़ा भीतर जाने के लिए कोशिश करना, भीतर जाने के लिए कोशिश करने के लिए। कल शाम आपको कह रहे थे सैमुअल कांट के बाद, जो जर्मनी के ये फिलोसोफर हैं, उन्होंने कहा, यू कैन नॉट प्लक ए फ्लावर इन योर ओन गार्डन विदाउट डिस्टर्बिंग द स्टार इन द हेवन। अपने बगीचे का फूल तोड़ते हो तो आसमान में तारे हिलते हैं, देखिए कितना सूक्ष्म है। तो तो ब्रह्म भी सूक्ष्म है। कोई एक बड़े चिंतक थे, चिंतक वो बड़े धर्मगुरु भी होंगे, तो जैसे गृहस्थी भी होते हैं धर्मगुरु, तो उनका भी एक बेटा था। तो बेटे के मन में क्या आया, उसने पूछ लिया, पापा ये इंसान कैसे बनता है, इंसान कैसे मिटता है। धर्मगुरु बोले, अरे मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिलता है, वो तो सत्य है, मिट्टी से बना, मिट्टी से मिल गया। वो बचाए वो जिस तखत के नीचे ऊपर बैठे थे, बोले नीचे बहुत मिट्टी है, कुछ बन रहा है क्या, कुछ बन रहा है क्या। वो पिताजी बोले, क्या है, आपने कहा ना मिट्टी से बन रहा है, मिट्टी में मिटता है, नीचे कुछ बन रहा है क्या। वो गुरु चुप हो गए, चुप। मगर ये एक बात जानना चाहिए, कोई भी तत्व के भीतर जाना, जो भीतर जाएंगे मंथन करेंगे, वो लोग कहते हैं कि ये समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन हुआ तो जहर निकला। हमारे भोले बाबा को बुलाया, पियो, तो भोले बाबा ने पी लिया, महादेव जी ने, नीलकंठ कहला गए। और जब अमृत निकला तो देवता लोग बुलाए नहीं, भगवान नारायण भी नहीं बुलाए, तो महात्मा लोगों को तकलीफ हो गए, बोले क्या बात है भाई, जब जहर निकला तो हमारे शिव ठाकुर को बुला दिया, और अमृत निकला तो तुम लोग मिलके पी गए, उनको बुलाया नहीं। बोले तो नारायण को ही पूछेंगे। भगवान नारायण ने कहा, भाई पहले भी एक बार मंथन हुआ था, वो मंथन हुआ था उसमें भी अमृत निकला था, वो जो मंथन में से अमृत निकला वो भोले बाबा अकेले पी गए थे, इसलिए इस बार नहीं दिया उनको। वो कौन सा था, वो तमाम शास्त्रों के समुद्र का मंथन हुआ था। शास्त्र जो है ना, ये दृग्दृश्य विवेक है, विवेक चूड़ामणि है, हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, सब तमाम तमाम शास्त्रों का मंथन। उसमें से क्या निकला अमृत, वो निकला राम, महादेव सतत जपत एक राम नाम, काशी मरत मुक्ति करत कहत राम नाम। परसों कोई माता जी कह रही थी, मुझको तो ओम नमो नारायण बोलने का अभ्यास नहीं, स्वामी जी माफ करना, मुझे तो राम मंत्र की दीक्षा है। मैंने कहा अच्छी बात है, बड़ा अच्छा है। हमारे आश्रम में रामनिवास गुप्ता जी एक बड़े महात्मा हुए, अभी है शरीर, उनकी माताजी आकर के रहती थी, कलकत्ते से आती थी, 2:30 बजे उठ जाती, गंगा नहाती है, सारा दिन में 24 घंटे में 18 घंटा श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। वो मोटे मोटे दाने 11 माला मिलाकर के एक, मुरारी बापू ने भी उच्च है, वो 11 माला मिलाकर के एक श्री राम श्री राम श्री राम। मगर ओ श्री राम श्री राम श्री राम बोलते बोलते उनकी चेतना कितनी दिव्य हो गई, वो जैसे कि बाबुलनाथ में कथा करे और यहां कनेक्शन लगा दे, यहां बैठ के सुन सके, ऐसे हमारे आश्रम में जो कुछ भी सत्संग होता उनका कनेक्शन हमने माताजी के पास दे रखा था। परम भागवतीय पुण्य श्लोक प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन श्री कृष्ण शंकर शास्त्री जी के भागवत कथा, वो भागवत कथा में दुर्भाग्य से उनका पोता भागवत का शरीर ठीक नहीं था, 4-5 टेम्परेचर, कथा में बैठे उनका चित्त भागवत में। वो माताजी मेरे को बोली, कन्ना, मेरे को कृष्णा बोलती थी, कन्ना वो महाराज को बुलाओ। तो बुलाएंगे, महाराज मेरी धोक ले लो, प्रणाम मेरा। फिर क्या बोला, आज आपने रुक्मणी के कथा को कहा, कहा रुक्मणी ने पत्र लिखा था, लेकर के ब्राह्मण गया, फिर कृष्ण भगवान को लेके आया, रुक्मणी जी ने वो ब्राह्मण का प्रदक्षिणा किया, हाथ जोड़ दिया, दक्षिणा तो दिया नहीं। ये तमाम बात जो है आपने कही, किंतु रुक्मणी ने जो पत्र लिखा था वो श्लोक पढ़ना चाहिए, वो अगर कथा में नहीं पढ़े तो कथाकार को पुण्य नहीं होता है। आप गंगा तट पर बैठ करके नहीं पढ़े, पहले पढ़ो और देखो भाई बुढ़िया है, कखग का भेद जानती नहीं, राम लिखना भी जानती नहीं, पढ़ना भी जानती नहीं है। हाँ, वो इतना गौर से सुनते सुनते श्री राम बोलते बोलते कृष्ण शंकर शास्त्री जी महाराज पूज्य दादाजी, हाँ
जो आजकल भागवत में वो हमारे डोंगरे महाराज भी उनको पूज्य भाव से प्रणाम करते थे, आई से को बोल रही आप ये पढ़ो। उन्होंने पढ़ लिया तो एक फल का टोकरा दिया, 1000 रूपये दक्षिण, मुझे क्षमा करना किंतु आप गंगा तट पर हैं हमारे गुरु जी के आश्रम में। ये कैसे होता है? जब आप गहन तत्व के भीतर जाएंगे, ब्रह्म है वो सर्वत्र है, वो दृश्यमान में है, अदृश्यमान में है, वो स्थूल में है, वो सूक्ष्म में है, वो चेतन में है, वो जड़ में। अभी महाराज जी कह रहे थे वो जो जड़ में है वो चेतन में भी है, तो ब्रह्म सर्वत्र है। किंतु जो सर्वत्र होते हुए भी आप कहते हैं जो नाश हो गया, तो ब्रह्म को कभी नाश नहीं है, विनाश नहीं है। अभी हम थोड़ा फिर से इन तमाम को पढ़ेंगे, 3रा श्लोक से पढ़ते हैं। बोलिए, श्री भगवान वाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्ममुच्यते भूत भावोद्भव करो। देखिए ये स्वाध्याय होने से करो नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्वाध्याय होगा तो भूत भावोद्भव कर, क्योंकि ये पृथक्करण करेंगे, विसर्ग है उसका ओ होता है, तो भूत भावोद्भव कर विसर्ग कर्म संगीत अधिभूतं क्षरः भावः अधिभूतं क्षरः भावः पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यप्रयाति समद्भावम् याति नश्चत्र संशयः। अक्षरम ब्रह्म परमम, जो ब्रह्म है वो अविनाशी है, वो शाश्वत है, वो चिरंतन है। यह दृश्यति तनृश्यति, तो दृश्यमान है तो उसको नाश होता है, जो पदार्थ है उसको नाश होता है, जो सॉलिड लिक्विड भी हो तब भी क्या हुआ, वायु भी है तब भी क्या हुआ, ब्रह्म इन तमाम से परे है। ये ध्यान रखना, इन तमाम में ब्रह्म है, ब्रह्म में ये तमाम है, किंतु इनका नाश है, ब्रह्म का नाश नहीं है। अभी कैसे की समझ लीजिए, ये कमरा में अभी क्या क्या है, मैं भी हूं आप भी हैं, हम चले जाएंगे यहां से कमरा खाली हो जाएगा, ये कुर्सी टेबल भी हटा दिया जा सकता है, ये श्रृंगार सारा हटा दिया जा सकता है, यहां की हवा को निकाल सकते हो क्या? हवा को भी निकाला जा सकता है वैक्यूम करके, किंतु आकाश को निकाल सकते हो क्या? ये बड़ा जटिल प्रश्न है। ये ब्रह्म का सूत्र जो है थोड़ा समझना चाहिए कि आकाश जो है उसको हम नहीं निकाल सकते। सायंकाल जो हम बात करते हैं कि आदि मूल तत्व जो है वो आकाश है, घड़े के अंदर जो खाली जगह जिसको घटाकाश कहते हो, ये मठ में खाली जगह को मठाकाश कहते हो, चित्त में खाली जगह को चिदाकाश कहते हो, ऊपर जो स्पेस है उसको महाकाश कहते हो, क्या इस आकाश को शून्य को हम शून्य के प्रति लेके जा सकते हैं? तो फिर ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए ब्रह्म हाथ में मुट्ठी में नहीं पकड़ सकते, वो शब्द स्पर्श रूप रस गंध तन्मात्रा से परे है, प्राण अपान उदान व्यान समान से परे है, वो कर्मेंद्रिय से नहीं प्राप्त हो सकता, न ज्ञानेन्द्रिय से नहीं अनुभव हो सकता है। पृथ्वी जल तेज वायु बस इतना छोड़ दो, आकाश तो स्वयं है, क्योंकि वो आकाश जो है वही सब कुछ बना हुआ है, ब्रह्म ही यह सब कुछ बना हुआ है। राखना रमकड़ा मारा रामे रमता राख्या रे, मृत्यु लोकनी माटी माथी मानव कहीं भाग्या रे। ये समुद्र किनारे जाकर के जो बच्चे खेलते ना उनको थोड़ा देखना, वो एक पांव रखते हैं, पांव रख करके रेती का एक ढेर बना लेते हैं, तो धीरे से पांव ले लेते हैं, फिर ऐसा करके करके गोल करते हैं, फिर सामने से भी ऐसा करते हैं, दाएं से भी बाएं से, एक रेती का लड्डू बना के उसके ऊपर रखते हैं, फिर उसके चारों ओर एक दीवार बनाते हैं, उसमें भी चार गेट लगाते हैं, फिर इधर से उधर से, कहीं आजकल तो पत्ता बता है नहीं चौपाटी में, ला करके इधर लगा देते हैं, और वहां पर गुड्डू आ गया, भैया आ गया, तो आगू जाने मम्मी देखो ना तोड़, ऐसा करके भगा देते हैं। पर वो ऐसे करते करते जो शाम ढल गई, अंधेरा हो गया, चलो बिटिया गुड़िया चलो, अपना पांव से तोड़ के चली जाती है। वो इतना प्यार से बनाया, भैया आया गुड्डू आया तो चिल्लाई दूर जा, और खुद तोड़ के चली गई। क्यों? उसको बनाने का मजा है, तोड़ने का और भी मजा है। ये क्यों मजा है? क्योंकि वो ऐसी अवस्था में है, ब्रह्म अवस्था में है, उसकी अवस्था में जड़ता नहीं है, उसकी अवस्था में अहंकार नहीं है, उसकी अवस्था में एक केवल शून्यता है। ऐसी शून्यता जहां पर राग बेस काम क्रोध लोभ छल कुछ भी नहीं है, निर्मम निरहंकार सम दुख सुखक्षमी संतुष्ट सततम योगी यथात्मा दृढ़, यह सब भरा हुआ है। इसलिए उसको बनाने का आनंद है और मिटाने का भी आनंद है। वो सुख भी नहीं, उसको दुख भी नहीं, क्यों? जहां था उसी के अंदर में मिला दिया। ये एक अवस्था को देखिए, वो उस समय उनकी मन की क्या अवस्था है, वो मन ही नहीं होता है, वो मन के परे हैं। तो अक्षरम ब्रह्म परमम, तो जो ब्रह्म जो है वो एक सर उसको अविनाश, वो विनाश नहीं है, वो परिवर्तनशील है किंतु विनाश नहीं होता है। वो भाप जैसे, भाप से बर्फ बन गया, फिर बर्फ में से फिर पानी बन गया, तो ऐसे ही हमारे जीवन में ये परिवर्तन तो होता रहता है, किंतु वो परिवर्तन में क्या वो ब्रह्म बताओ? अच्छा, वो जो छोटा बच्चा है एक दिन का, उसकी फोटो खींच लो, 10 साल का हो तब फिर खींच लो, अब 35 साल के खींच लो, अब 50 साल के खींच लो, बोलो ये किसका फोटो है? वो रोम के एक बादशाह रहे, तो उनके मन में था मैं ईसा मसीह के बहुत सुंदर चित्र बनाऊंगा, बनाइए। वो चित्रकार को बुलाया, बुला करके कहा बनाओ पूरा जीवन। तो चित्रकार ढूंढा कहीं से यीशु के समान कितना सुंदर बालक कहां मिले, तो जैसे मिला था पहले यीशु भी किसी गडरिया के पास में, तो वैसे ही एक किसी वो भेड़ बकरी चराने का बालक बहुत सुंदर था, उसको लेके आए और रखा, उसको खाना पीना माता पिता को भी दिया, राज के दरबार में क्या तकलीफ है, और उसके चित्र बनाया। वो थोड़ा बड़ा होता गया तो उसका चित्र बनाते चले गए। वो ऐसे करते 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 वो युवान हो गया, तो उसको छोड़ दिया, जाओ अभी जाओ। कोई बनाते बनाते 30-35 साल लग गए, चित्रकार तो बूढ़ा हो गया, किंतु वो इतनी अद्भुत गैलरी बनी है। अब क्या होगा? अब वो यीशु क्रिस्ट को एक क्रॉस में लटकाना है, उसको जल्लाद है कील ठोकेगा, जल्लाद को कील ठोकना है, जल्लाद को कील ठोकना है, तो ऐसा क्रूर आदमी भी तो चाहिए। जो पहले बच्चा लाए थे इतना सुंदर, जिसकी आंखें इतनी सुंदर है, बाल घुंघराले हैं, हाँ कृष्ण परमात्मा के समान, वो इतना सुंदर चिकचिक वाले गाल हैं, इनकी सुंदर सुंदर आंखें हैं, कोमल कोमल उनकी ये उंगलियां हैं, नाजुक नाजुक उनके चरण हैं, ऐसे कोई यीशु को ढूंढ के लाए थे। वो जल्लाद भी चाहिए, क्रूर चाहिए, भयंकर चाहिए, कि जो परमात्मा के स्वयं है, ईश्वर के अवतार के समान है, पैगंबर है, उनको खीर ठोक रहा है हाथ में पांव में सिर में। बहुत देखा, बहुत देखा। एक कोई जंगली लोगों के जैसे अड्डा था, वहां कोई ड्रिंकिंग बार था दारू के अड्डे में, भयंकर एक चेहरा वाला खूंखार मदहोश, वो शराब पी करके बीड़ियां पी करके उसके आंखें भयंकर हो गई थी, चेहरा व्याकुल व्याघ्र के समान, देखने से भय हो जाएगा। उसको लेके आए, बैठो यहां, शराब पिलाते रहे, उसका चेहरा देखते रहे, बना दिए। जब चित्र पूरा हो गया, उसको खाना भी देना बंद कर दिया, शराब भी देना बंद कर दिया, अब जाओ। वो 3 दिन गया नहीं, ऐसे रहा। अब जब नशा उतर गया तो सोच रहा है मैं कहां हूं, वो देखने लगा इसे, सबसे पहले देव उसने क्या देखा है, अपना ही चित्र देखा है, अपना ही चित्र देखा है। मैं यहां हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ईसा मसीह को मार रहा हूं मैंने। फिर वो ऊपर से नीचे गया, नीचे गया धीरे 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 आकर के, ओ जब यौवन का आया, अरे ये भी मेरा ही चित्र है। बताइए, जब बाल ईशु का चित्र देखना था जिस इंसान को लेके आए, इतना सुंदर कोमल कमल के समान, जब ईशु को जल्लाद, वही आदमी आ गया। वो जो कोमल था वही क्रूर भी बन गया, शरीर का भेद हो गया, किंतु वो सिर पकड़ के फूट फूट करके रोया। उसमें एक चेतना तो है ना, जो बाल समय में चेतना थी, अभी वृद्धा प्रौढ़ावस्था में एक मदहोश, उसमें भी चेतना है। तो जो चेतना है वो तो ब्रह्म है, वो तो अक्षर है, क्योंकि उनके मन में एक फीलिंग होता है, आई डन समथिंग रॉन्ग, कमिटेड ग्रेट ब्लंडर। उस चेतना को पकड़ना, इंसान गलत नहीं होता है, गलती गलत होती है। तो इंसान को कभी धिक्कार नहीं करना, क्योंकि इंसान जो है वो, तेलुगु भाषा में एक कहावत है, चिमड़ के ओचिंत काया, नी वेंत चिमड़ना नी पुलप पोदू, उड़िक के उली पाया, नी वेंत उड़िकना नी कंप पोदू। अरे इमली तो कच्ची थी, पक गई, सड़ गई, तब भी तेरी खटाई नहीं गई। हे प्याज, तेरे परत के परत के परत निकल गए, तब भी तेरी बदबू नहीं गई। ये इमली की खटाई नहीं जा सकती है, जो प्याज है उसकी गंध नहीं जा सकती है, किंतु इंसान चाहे तो अपना परिवर्तन कर सकता है। क्यों? वो ब्रह्म जो इमली में है वो खटाई के स्वरूप में है, वो ब्रह्म प्याज में उसकी बदबू के स्वरूप में है, कस्तूरी में अपनी सुगंध के स्वरूप में है, केसर में अपनी स्वरूप के में है, और इंसान के अंदर में एक चेतना है जो की इच्छा होने पर वो अपने चैतन्य की अधिकृतता पर खड़ा होकर के अपने स्वभाव में, तो क्या कहा, स्वभाव अध्यात्म है। क्या कहा कि स्वभाव अध्यात्म उच्चते, तो आपका जो स्वभाव है वही अध्यात्म, आपका मूल स्वभाव है वो प्याज नहीं है, आपका मूल स्वभाव है वो खटाई नहीं है, आपका मूल स्वभाव राग द्वेष नहीं है, आपका मूल स्वभाव क्या है, आनंदोहम है, आपका मूल स्वभाव है चेतना है, खुशहाली है, वो मदहोश नहीं है, वो कैसा है, दिदीप्यमान चैतन्य है, दिव्य भव्य प्रकाशमय पुंजमय आलोकमय, वही तो आपका स्वभाव है। क्यों? क्योंकि वो ब्रह्म है, ब्रह्म ही आपका स्वभाव है, ब्रह्म ही आपका अध्यात्म, अध्यात्म ब्रह्म पृथक पृथक नहीं है। मैं कहता हूं मेरे को रुपया चाहिए, वो क्रिकेट खेलने वाला है, किंग लेटर करता है, हाँ वो यहां पर ऐसे नहीं हो सकता है, अब मैं आपको क्या चाहिए, मेरे को आपका दाहिना हाथ दे दो, बाएं हाथ किसी को दो, ऐसा थोड़ा होता है। वो इंसान को बुलाए तो दाहिना हाथ बाएं हाथ दोनों आ जाएंगे, बोलेंगे कि महाराज जी हमारे घर में चरण डालना, बट आई लव ऑलवेज राइट, तो ब्रिंग योर राइट चरण, लेफ्ट को नहीं लाना। अरे ऐसे थोड़ा होता है मेरे प्यारे, राइट आएगा तो लेफ्ट भी आएगा, अनलेस अनटिल यू कट इट एंड पुट इट समवेयर, हाँ लंगड़ा करके ला, क्या होता है, ये तो पागलपन है। तो स्वभाव जो है वो ब्रह्म का स्वभाव क्या है, ब्रह्म का स्वभाव ही अध्यात्म है। ब्रह्म का स्वभाव अध्यात्म माने क्या है, जो नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे, वो तो है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वो ज्योतियों की ज्योति है, ज्ञान का ज्ञान है, प्रकाश का प्रकाश है, चेतना की चेतना वो तो है। क्या कहा कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीत, ये क्या कहा है, स्वभाव भूत भावो, भूत भाव क्या है, भूत के भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला, हमारे भीतर में जो भाव उत्पन्न होते हैं, विसर्ग, विसर्ग क्या है, शास्त्र विहित यज्ञ दान होम निमित्त द्रव्य का त्याग, सर्ग विसर्ग, सर्ग जोड़ना विसर्ग अलग करना, योग वियोग, योग है सुख है, योग है आनंद है, योग है शांति है, योग मने जोड़ना है, योग का अर्थ है दिव्यता है, योग का अर्थ भव्यता है, योग का अर्थ पवित्रता है, और वियोग का अर्थ दुख है, वियोग का अर्थ यातना है, वियोग का अर्थ क्लेश है, वियोग का अर्थ कंकाश, ये तमाम है। तो सर्ग विसर्ग, सर्ग जोड़ना है, विसर्ग अपने आप को अलग करना है। तो किसका अलग? कर्म संगीत, क्या कहा? किसे अलग करते हैं? भूत भावोद्भव कर, शास्त्र विहित यज्ञ दान होम जो है, अरे उन तमाम द्रव्यों को त्याग करो। अनवांटेड थिंग, वो किसी ने कहा कि हमारे आंगन में हम वो तीन बंदर महात्मा गांधी के रखना चाहते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है, रखना चाहिए। नहीं स्वामी जी, हमारी भावना अलग है। ना क्या भावना है? महात्मा गांधी जी ने रखा था कि बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, किंतु अभी दुर्भाग्य से हमारी संस्था के जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी बुद्धि ऐसी हो गई है कि अच्छा मत सुनो, अच्छा मत बोलो, अच्छा मत देखो। हाँ, इसलिए मैं ये तीन बंदर रखना चाहता हूं। तो नीचे ये भी लिखूंगा, ताकि मैं तो अभी 90 साल का हूं, मगर मेरे पीछे लोग आएंगे तो सोचेंगे कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। हमको सोचना चाहिए अपने बारे में। तो ये क्या कहा? अभिभूतम क्षरो भाव। तो ये भाव जो क्या है? भाव जो है तो तीन प्रकार के भाव हैं। एक है अधिभूत है, दूसरा है अधिदैव है, तीसरा अधि यज्ञ है। तो जो भूत क्या होते हैं? जो पदार्थ है उसको भूत बोलते हैं, जड़ चेतन दोनों ही पदार्थ। पदार्थ जो है उसको क्या बोलते हैं? सॉलिड चीज। वो फिजिक्स में बोलते हैं ये बात, मैटर है, मैटर। तो मैटर क्या है? पदार्थ क्या है? जो कुछ भी दृश्य है पदार्थ है बहुत सारे। हाँ, तो वो पदार्थ जो है वो तो भूत है। अब क्या क्या पदार्थ है? मैं भी पदार्थ हूं, आप भी पदार्थ हैं, जो दृश्यमान है पदार्थ है। पेड़ भी पदार्थ है, एक कुर्सी भी पदार्थ है, माइक भी पदार्थ है, पुस्तक पदार्थ है, कार है, एरोप्लेन है, हवाई जहाज, तमाम चीज पदार्थ है। तो ये तमाम जो है उसको बोलते हैं अधिभूत। हमारे यहां तीन बात है कि लोगों को त्रिधा ताप बोलते हैं, त्रिधा ताप, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। तो आदि भौतिक क्या होता है? अरे भौतिक जो होता है कि आपका बहुत प्यारा सीरियल है नाना लाडो इस देश, मान लो ये आपका एक बहुत प्यारा सीरियल है। क्यों? उसमें खड़ूस दादी आती है। तो ये खड़ूस दादी को देखने के लिए आपका है, मगर वो आप उस सीरियल को, अरे भाई उस समय आता है, मस्ट गो देयर, घर में चले जाओ, लाइट चली गई। अब इंडिया फाइनल में आ गया क्रिकेट में, फाइनल क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में इंडिया है, और सामने इतवाक से पाकिस्तानी आ गया और इंडिया जीत रहा है, उस समय लाइट चली गई, हाय हाय सर्वनाश हो इलेक्ट्रिक कंपनी का, इधर उधर सबके लाइट गई है। क्यों? मेजर ब्रेकडाउन है। ये है आदि भौतिक ताप। आजकल कॉन्टेसा गाड़ी नहीं, पहले एक 20 साल के पहले कॉन्टेसा गाड़ी थी। कॉन्टेसा गाड़ी अपने आंगन में खड़ा करना, व्हाट ए ग्रेट थिंग। पड़ोसी के आंगन में, यू डोंट नो, आप आएंगे ना वहां पर जिनके आंगन में वो है ना कॉन्टेसा, बस उसके साथ में हम लोग रहते, वो कॉन्टेसा गाड़ी को देखने से खुश। अभी कॉन्टेसा का फैन बेल्ट भी नहीं मिलता है, मुश्किल बात देखो। ये बिजली चले जाना, जमाई घर में आवे तेजी से गैस खाली थी जाए, ये आदि भौतिक है। आदि भौतिक है तमाम बात है। तो ये आदि भौतिक क्या है? ये तमाम दुख है हमारे। फिर आदि दैविक क्या है? बहुत बारिश हो जाना, ये हमारा जापान में बड़ी पीड़ा देखो कितनी आदि, ये तमाम आदि भौतिक भी व्याधि है उनको, अभी आदि दैविक भी है और आध्यात्मिक तो है, ये तीनों व्याधि उनको है। इतना एवलाइंज हेल स्ट्रॉम हो जाना, बहुत जोर से बारिश हो जाना, ओले बहुत गिर जाना, लैंडस्लाइडिंग हो जाना है, मच्छर बहुत बढ़ जाना है, खटमल बहुत बढ़ जाना है। तो ये तमाम जो है वो आदि दैविक है। और आध्यात्मिक क्या है? वो हमारे भीतर जो ताप है, ईर्ष्या है, द्वेष है, बड़ी कनिंग फीलिंग भावना है, राग है, क्लेश है, वो तमाम जो है आदि आध्यात्मिक है। तो यहां क्या कहा? अधिभूत, तो जो सॉलिड है, जो दृश्यमान है, वो तमाम तो अधिभूत है। तो भाव हमारे तीन प्रकार के, तो एक तो है हमारा जो शरीर है देह का, किंतु हमारे देह जो है उसको हम देखते हैं। देह के अंदर एक देह है, कभी उसको देखने के लिए कोशिश किया गया? एक आदमी बड़ा दुखी हो गया बहुत। मैंने कहा आप अखबार चलाते हो, मुझे बात कहे। किसी ने कहा उनको कि भई ये स्वामी अध्यात्मानंद जी हैं, वो तो योगा आचार्य हैं और आईएएस लोगों को भी सिखाते हैं और उनको 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 बड़ा दुनिया भर का सब बताया। तो वो आदमी चुप बैठा था। फिर मेरे को बोला, महात्मा जी आपको कोई अच्छे लोग नहीं मिले सिखाने के लिए? इन सब नालायक लोगों को सिखाते हो। मैं तो कुछ नहीं बोला। वही लोग ही बात कर रहे हैं, उनके माता पिता भी बैठे थे। कोई अच्छे लोग नहीं, सब नालायक लोगों को सिखाते हो। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? फिर भी नहीं बोला, मेरे मुंह में उंगली डाल रहा है, बोल। तो मैंने कहा आप तो अखबार चलाते हो ना? हाँ, क्या हुआ? आप अखबार के साथ रहते हो? आपकी पत्नी तो है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी हैं, अच्छा दोस्त भी हैं। तो कभी इन तमाम को छोड़ के अपने साथ रहने की कोशिश किया क्या? व्हाट्स दैट? तो ये तो मुश्किल है, ये पता ही नहीं है आपको। एक और नया स्वाद है, असली स्वाद तो पता नहीं है। आप पत्नी के साथ में रहते हो, बच्चों के साथ में रहते हो, अखबार के साथ रहते हो, टीवी के साथ रहते हो, माता पिता के साथ, थोड़ा अपने साथ, हैव एन अपॉइंटमेंट विद द सेल्फ, अपने साथ रहने की कोशिश करो और चुप से बैठो, अपने को देखो, आंख बंद करके अपने को देखना। आंख बंद करके कैसे देख सकते? अरे अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, वो बाहर जो समुद्र उछलता है ना, उससे बड़ा समुद्र अंदर भीतर है। उस भीतर के समुद्र को थोड़ा देखना, कितना उछल रहा है, कहां कहां उछल रहा है। एक दिन दो दिन नहीं, रोज देखना, सुबह देखना, दोपहर को देखना, पांच पांच मिनट चुप से बैठना, कुछ भी सुनना नहीं, कुछ भी बोलना नहीं, आंखें बंद, कान बंद, हिलना भी नहीं, देखते रहो अंदर तमाशा क्या क्या होता है, फिर पता हो जाएगा। कभी चुप से कोशिश करना, जब कोई भी नहीं होना, अकेला कमरा बंद कर लो, फिर जो सौथी मोटो अरीसो हो उसके सामने खड़े हो जाओ, उसको चुपचाप पूछो वो क्यों लागू छो। वो जोर से हंसेगा, बेवकूफ चुप रहे, मेरे को पता है कैसे लागू छो, क्योंकि उसको पता है आप कैसे हैं। बाहर तो इतना तिलक लगा लिया, जो माला भी डाल लिया, मगर अंदर क्या गड़बड़ करता है वो उसी को पता है। इसलिए अपने आप को देखने की कोशिश करो। ये जो अधिभूत है वो तो बाहर का है, अधिदेव जो है आपके भीतर एक और है, स्थूल के भीतर एक सूक्ष्म है। वो कोई हाड़ पिंजर नहीं, वो फ्लेश नहीं है, वो मांस नहीं है, वो मैरोज नहीं है, स्किन नहीं है, लीवर किडनी पैनक्रियास नहीं है, एक और एक चेतना है। और वो चेतना है, दुर्भाग्य से वो हमको पता ही नहीं है कि उसकी अवस्था क्या है, हमने कभी सोचा नहीं इस दिशा में, अपने आप को टटोला नहीं है हमने आपको, तो पता हो जाएगा। हाँ, ये तो सुंदर जो दीवार है ना, उसमें सब चूना रंग किया हुआ है, थोड़ा खुतर लो उसको, खुतर लेंगे तो फिर पता हो जाएगा अंदर पत्थर है, सरिया है। तो कोई आ गया तो हमको ये माला पहना दिए तो हम बोले झुनझुन वाला जी धन्यवाद जी, बड़ी कृपा, बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी। हाँ, इधर बैठा दिया ऊपर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो माला नहीं पहना है, कोई आए नहीं, क्या प्रेम पुरी वाले लोग ऐसा ही करते हैं, बड़ा मुश्किल है भाई। हमारे गुरुदेव स्वामी शिवानंद जी महाराज बहुत विनोद करते थे, बोलते थे कोई भी महात्मा आकर के जब बोलेगा ना, तीन काल में जगत नहीं, बोलो ना, तीन काल में जगत नहीं, जगत सपना है, बोलो ना, जगत सपना है, जगत न था, जगत न है, न जगत होगा, जगत तो नहीं है, जगत तो मिथ्या है। उनको घर में बुला लो, भोजन देना, अच्छा भोजन, छह सब्जी, छह रायता, छह कचुंबर, दाल फ्राई और कड़ी पकोड़े वाली, किंतु नमक डालना नहीं। तो महात्मा जी प्यार से बोलेंगे, माता जी ये रसोई में नमक नहीं है, तो बड़े प्यार से बोलना, जब तीन काल में जगत नहीं है तो रसोई में नमक नहीं है, मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। तीन काल में जगत नहीं है वो बोलना बहुत सीधा है, बिना नमक के दाल खाना बहुत मुश्किल है। श्री रामकृष्ण परमहंस देव कहते हैं, त्रिगिड़धा त्रिगिड़धा त्रिगिड़धा, क्रांग 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 क्रांग, धागे त्रिगिड़ त्रिगिड़धई, धागे त्रिगिड़ त्रिगिड़धई, धागे त्रिगिड़ त्रिगिड़धई, झुम ता झुम, बोलना बहुत सीधा है, मृदंगम लेकर के बजाना बहुत मुश्किल है। अधिभूत अधिदैव अधियज्ञ ब्रह्म अध्यात्म कर्म के व्याख्यान करना बहुत सीधा है, किंतु ब्रह्म के भाव में सदा इन ऑल कंडीशन आई एम ब्लिस 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 एब्सोल्यूट, जीवन की तमाम आपाधापी के बीच में अपने आप को मैं ब्रह्म ही हूं, ब्रह्म से नीचे नहीं आना, ब्रह्म ही भाव में रहना। अध्यात्म में मेरा स्वभाव जो है वो मूलतः अध्यात्म है। मूलतः अध्यात्म माने कि कैसी भी अवस्था, जागृत में जागृत, स्वप्न में जागृत, सुसुप्ति में जागृत, तीनों अवस्था में केवल यही अवस्था, इसको पकड़ ले तब तो पता हो जाएगा। तो ये अधिभूत जो है वो बाह्य है, वो ग्रोस है, वो शटल नहीं है, वो स्थूल है, वो सॉलिड है, किंतु उनके अंदर जो चेतना है वो अधिदैव, वो जो है वह आपकी अंदर की चेतना, वो अधिदैव है, किंतु उनके भीतर भी एक है जिसकी वजह से चेतना बनी हुई है। हाँ, ठरी गया, ठरी गया, ठंडो पड़ी गयो, चार तो नहीं, उसका मतलब है यज्ञ पूरा हो गया। ये आर्य समाजी लोग होते हैं ना, मुझे पता नहीं बंबई में करते कि नहीं, हमारे ऋषिकेश में हरिद्वार में किसी आर्य समाजी का जो निधन होता है तो जैसे यज्ञ करते हो वो चिता के ऊपर शव रख करके ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भार्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा, एक लंबा डंडा रहता है, उसे घी डालते रहते हैं तीन घंटा तक, एक एक लोग आकर के आहुतियां देते रहते हैं, सामग्री की आहुति, बोले यह भी यज्ञ है, आपके भीतर भी यज्ञ चल रहा है, आपके यज्ञ जो है आपके भीतर चल रहा है। अगर यज्ञ ना हो तो विचार ही नहीं होगा, यज्ञ नहीं हो तो चेतना नहीं होगी, यज्ञ नहीं होगा तो शब्द स्पर्श रूप रस नहीं, यज्ञ होने पर तो धुआं उठता है, यज्ञ होने पर तो पर्जन्यात यज्ञ संभव, यज्ञाधवति पर्जन्य, ये तो परस्पर है, यज्ञ किया तो ही पर्जन्य होता है, यज्ञाधवति पर्जन्य, पर्जन्यात यज्ञ संभव, ये यज्ञ से पर्जन्य वर्षा होती है, वर्षा से खेती होती है, खेती से अन्न पैदा होता है, अन्न से इंसान बनता है, और इंसान का वीर बनता है, उससे ओजस बनता है, उससे तेजस बनता है, उससे प्राज्ञ बनता है, फिर वो यज्ञ करता है। तो ये एक बना हुआ यज्ञ परंपरा बनी हुई है, चेतना को जागृत रखना है, वो चेतना को जागृत रखने के लिए क्या करना है, यही है कि ये आदिभूत जो है वो बाह्य है, उसके भीतर एक चेतना, वो एक विचार, ये विचार साधारण नहीं है। कभी कभी आप देखो विचार को भी पढ़ने की कोशिश करना, विचारों की भी मूर्तियां होती है, विचारों के भी आकार होते हैं, विचारों के भी दृश्य होते हैं। एक सुंदर आदमी को देख लिया तो सुंदर है, किंतु 20 साल के बाद में देखो तो वो सुंदर नहीं भी हो सकता है। और एक कड़वा आदमी हो, बहुत भयंकर हो, तो 20 साल के बाद में देखो तो कड़वा भयंकर होना जरूरी नहीं है, उसने अपना स्वभाव परिवर्तन कर लिया है, किंतु स्वभाव परिवर्तन होने पर भी उसकी जो चेतना है वैसी बनी हुई है। सुंदर से इंसान का अगर आप छवि खींच लो तो चेहरा तो सुंदर है, किंतु उनके विचार जो है वो इतने क्रूर पहले थे, वो उसके दिमाग में अभी भी रहे हैं, तो चित्रकार चित्र बनाएगा, फोटो वाला फोटो खींचेगा तो घृणा हो जाएगी देख करके। कितने सारे लोग होते हैं उनके सुंदर चमड़ी होती है, नक्शा भी बड़ा सुंदर होता है, किंतु देखने से भय लगता है, उनके पास नहीं बैठो, लगता है कहीं कुछ कर देगा, क्यों, उनके पास में बैठने से उनके आंदोलन, उनके जो वाइब्रेशन है, यू फील ए नेगेटिव वाइब्रेशन, क्यों, उनके भीतर में जो अधिदैव अधियज्ञ है वो नेगेटिव नकारात्मक है। और कुछ लोग हैं उनके पास में बिना मतलब के, जय श्री कृष्ण, क्या जाओ चल, मतलब नहीं तुम्हारा, क्यों बात करते हो, किंतु उनकी चेतना जागृत है। अधिदैव अधिभूत और अधियज्ञ वो अध्यात्म में निहित है, वो पवित्र है, पवित्र है। इसलिए आपने कभी शेर देखने जाते हो कि नहीं, हाँ, वाघ जुआ जाए, रणथंभौर, गिरनार में लोग सिंह जुआ जाए, अरे बंदर को भी देखना पसंद है, वो समुद्र में पानी नहीं पी सकते किंतु घंटों तक बैठ के समुद्र को देख सकते हो, सांप को देखते हो, सूर्य उदय को देखते हो, सूर्य अस्त को देखते हो, खिलते कमल को देखते हो, मयूर नृत्य करने वाला मयूर को देखते हो, मुझको आपको कोई देखता है क्या? कोई देखता नहीं है। वो छोटे बच्चे को उठा लेते हो गोदी में, मुझको आपको उठाता है क्या? उठाएगा एक नहीं चार आदमी उठा लेगा। कब? जब तू अध्यात्म स्वभाव में चला जाएगा तब। वो जो बच्चा है वो ब्रह्म भाव में है, वो निर्दोष है, निष्कपट है, निष्पाप है, इसलिए उनको उठा लेते। वो जो समुद्र है उसमें कपट नहीं है, बाघ में कपट नहीं है, शेर में कपट नहीं है, उनमें शुद्धता है, पवित्रता है। और हम हेड टू फुट इतना छल से, कपट से, अनध्यात्म से भर गए, अपने स्वभाव से विरुद्ध हो गए। इसलिए देखना तो दूर की बात है, फोन आता है ना तो पापा पापा ये तो कमल काका नो फोन छे, कही दे नथी। अंकल अंकल पापा कहे छे के नथी। तो ये निर्दोष है, वो दोषी है। तो क्यों? हम किसी की बात सुनना पसंद नहीं करते, किसी को देखना तो दूर रही। क्यों? क्योंकि हम अध्यात्म से परे हो गए, हम ब्रह्म से परे हो गए, हमारा जीवन दम्भी हो गया है, छल में आ गया है। उस दम्भ से परे हो जाए, वास्तविकता में ट्रांसपेरेंसी हो जाए। जो देखा है थे वो अच्छे, हाँ बोलता कुछ करता कुछ, यद मनसि तद वचसि तद कर्मणि। जो मन में है वही वचन में वही कर्म, मनसि अन्यत वचसि अन्यत कर्मणि अन्यत, तो दुख की बात है। वाणी को विराम करते हैं, कल पुनः प्रातः काल। परमात्मा सभी का मंगल करे, शुभ करे। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आज कुछ समय अधिक लिया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। ओम नमो नारायण।